أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة آيات نمبر 21. ابھی تک ہم نے جتنی سورة البقرة پڑھی ہے یہ آیت جو آیت نمبر 20 کے بعد جو حصہ شروع ہو رہا ہے یہ پہلے سارے حصوں کے اوپر آپ یہ سمجھیں ایک دعویٰ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ مختلف مثالوں کے ذریعے اور پیغمبروں کے قصوں کے ذریعے اقوام کے قوموں کے قصوں کے ذریعے ایک بات سمجھاتا ہے اور پھر ان سب کے بعد ایک ایسی آیت آتی ہے جس میں اللہ کی طرف سے ایک دعویٰ ہوتا ہے. ان آیات کی پہچان انشاءاللہ آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے ہوگی. میں آپ کو یہاں پہ رفلی یہ بتا سکتی ہوں کہ جب ایک واقعہ یا ایک آیت گزرتی ہے تو اس کے بعد جیسے آئے یا ایوہ الذین آمنو تو یہ ایک نشانی ہے کہ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہ واقعہ بتانے کی مصلحت بتا رہا ہے اور وہ حکم بتا رہا ہے جو اس واقعے کے بعد ہمیں مان لینا چاہیے یا اس قوم کا حال سننے کے بعد ہم جب عبرت حاصل کر لیں تو پھر ہمارے عمل میں کیا تبدیلی آنی چاہیے. یا وہ باتیں جو ہیں وہ فا سے شروع ہوتی ہیں فے الف فا, اور فا جو ہے یہ اس کا مطلب ہے پس. یا جیسے ہم انگلش میں یا میتھس میں جب ایک تھیورم لکھ رہے ہوتے ہیں یا سائنس میں ایک تھیوری لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے آخر میں جب وہ تھیوری ثابت ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں دیئر فور اٹ از پروون دیٹ, یا یہ بات ثابت ہو گئی اور پھر ہم وہ بات کرتے ہیں. تو فا جو ہے یہ عربی میں دیئر فور کا مترادف ہے اور یہ جہاں پہ یہ آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پچھلی گزری ہوئی آیات کے بارے میں اب اللہ ایک دعویٰ کر رہا ہے یا اللہ ایک حکم دے رہا ہے یا اللہ مومنوں کو ایک مشورہ دے رہا ہے, ان کو یہ سمجھا رہا ہے کہ جو کچھ میں نے تمہیں ابھی تک بتایا اس سے یہ ثابت ہوا. ٹھیک ہے جی. تو ابھی تک جو ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھا ہے ہم نے تین قسم کے لوگ پڑھے ہیں جہاں سے سورت شروع ہوئی تھی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی دھوکہ نہیں ہے. ہدی للمتقین, یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. اور پھر ہم نے پرہیزگاروں کی پانچ نشانیاں پڑھی. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون ویؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون, آخرت پر یہ یقین رکھتے ہیں. یعنی ان کا ہر عمل اس بات کا آئینہ دار ہوتا ہے کہ ان کو جزا اور سزا کا یقین ہے. اس کے بعد ہم نے ان الذین کفروا, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا, رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا, سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر ایک مہر لگا دی ہے. وعلی سمعہم, اور ان کی سماعت پر, ان کے کانوں پر. وعلی ابصارہم, اور ان کی آنکھوں پر غشاوہ, پردے ہیں. تو یہ انکاریوں کا حال ہو گیا. اور اس کے بعد 8 سے لے کے 16 تک کافی لمبا ایک سیکشن گزرا ہے جس میں منافقوں کا بیان تھا. میں اس کا یعنی کہ اس کا جو مائنڈ میپ ہے یا جو میں آپ کے لیے روٹ ورڈز نکال کے اور پھر عمل کے پوائنٹس لکھتی ہوں وہ میں انشاءاللہ اس حصے کے آپ کو آج بھیجوں گی اسی سبق کے ساتھ, اور پھر اس سبق کا مائنڈ میپ بھی بھیجوں گی. اس کا زیادہ لمبا نہیں ہے کیونکہ یہ اس جو تین قسم کے گروپ اللہ نے بتائے ہیں, ایک متقی ہیں ایمان لانے والے ہیں, ایک انکار کرنے والے ہیں, اور پھر منافق ہیں جن کے دل میں کچھ ہے اور منہ پر کچھ ہے, یا جو دنیا کے لیے ایک چہرہ ہے اور اپنے شیطانوں کے لیے اور اپنے نفس کے لیے ایک اور چہرہ ہے. اور یہ سب سے خطرناک گروپ ہے کیونکہ یہ ہمیں سب سے زیادہ خود احتسابی پہ مجبور کرتا ہے. یہ آیات جو ہیں یہ ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ ہم میں کہیں یہ نشانیاں تو نہیں پائی جاتی, کیونکہ اس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, بسبب اس جھوٹ کے جو یہ بولتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں اور آخرت میں یہ لوگ ایک دردناک عذاب میں گرفتار ہیں. اس عذاب کی ابتدا تو اس جھوٹ سے ہوتی ہے, یعنی جھوٹ بجائے خود ایک عذاب ہے, اور پھر اس کے بعد عذاب در عذاب نکلتا ہے. جو میں آپ کو آج مائنڈ میپ بھیج رہی ہوں جس میں جھوٹے کی نشانیاں بتائی گئی ہیں, اس کو آپ غور سے دیکھیں, اس کو سمجھیں, रखें, और जो मैं आपको कल्ब के बारे में, दिल के बारे में जो माइंड मैप है उसको भी आपने गौर से देखना है। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि मैं मेरी शायद उर्दू की राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो मेरे जहन में एक नक्शा बनता है आयात को पढ़ के, वो मैं आपको आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको समझ नहीं आती, प्लीज़ माइंड मैप के ऊपर आप खुद ही, अब तो फ़ोन है इस तरह हमारे पास बड़ी सहूलियात हैं, तो आप उस पर निशान लगा के पूछ लिया करें कि डॉक्टर अफशां इससे आपका क्या मतलब है। क्योंकि मैं ये जो ये दौरा मैं कर रही हूँ, ये जो क्लासें मैं ले रही हूँ, इससे मेरा मकसद ये है कि कुरान की एक ज़िंदा तस्वीर हमारे और आपके जहन में बन जाए। कुरान एक ज़िंदा तस्वीर की तरह, जब हम एक आयत पढ़ें तो हमारे सामने एक तस्वीर आ जाए, एक तमसील आ जाए, और हम औरों को वो बात समझा सकें। ठीक है ना जी? तो ये माइंड मैप्स आपने बहुत गौर से देखने हैं, और वो सारी बातें, वो तीनों ग्रुप समझा के फिर अल्लाह ताला ने दो ज़बरदस्त मिसालें दी हैं जो कल मैंने आपको भेजी थी, कि इन लोगों की मिसाल पहले लोगों की जो इनकारी हैं उनकी मिसाल उसकी है, मसलुहुम का मसल लजीस तौकदा नारा, उस शख्स की जिसने आग भड़काई और फिर जब वो माहौल उसका रोशन हो गया तो ज़हब अल्लाहु बिनूरहिम, अल्लाह ने उनकी बिनाई छीन ली, वतरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन, और उनको छोड़ दिया अंधेरों में, लायुबसिरून, अब ये नहीं देख पाते। फिर सुम्मुन बुकमुन उम्यून, वही बात है कि मोहरें लगी हुई हैं इनके ऊपर। ठीक है, दूसरी मिसाल जो थी आयत नंबर 19 में, औ कस्वय्यिबिम मिनस्समा, जैसे कि बारिश है आसमान से, और उसमें ज़ुलुमातुं व रादुं व बर्क, उसमें अंधेरे हैं और कड़क है और बिजली है, और ये लोग गो के उस बारिश में भीग रहे हैं और वो बिजली इनके सामने कड़क रही है, लेकिन इन्होंने अपने कान बंद कर लिए हैं, इन्होंने हिदायत को सुनने से, हक को सुनने से इनकार कर दिया है। क्यों? हज़रल मौत, क्योंकि ये मौत से डरते हैं और ये भूल गए हैं, वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह तो घेरे हुए हैं इनकार करने वालों को, चाहे वो खुला इनकार कर रहे हैं और चाहे उन्होंने हक को सुनने से इनकार कर दिया और कानों में उंगलियां ठूंस ली हैं, वो कहीं अल्लाह से नहीं छुप सकते। लेकिन जब वो उंगलियां ठूंस लेते हैं और हिदायत को सुनने से इनकार कर लेते हैं तो क्या होता है कि उनके अंदर का, उनका कल्ब जो है उसमें अंधेरा छा जाता है। जहाँ पे हिदायत ने जाना होता है वो रास्ता बंद हो जाता है और उनके अंदर कभी भी हिदायत की रोशनी नहीं दाखिल होती। इसीलिए अल्लाह कहता है कुल्लमा अदवा अलहुम, जब भी वो भड़की, वो चमकी उन पर वो रोशनी, मशौफी है, यानी बाहर की रोशनियों में और बाहर की दुनिया की बातों में वो चलते रहते हैं, लेकिन जब वो बातें बंद हो जाती हैं या जब वो अकेले होते हैं या जब उन पर कोई तकलीफ़ आती है, जब दुनिया वाले उन्हें छोड़ जाते हैं तो क्या होता है, वह इज़ा अज़लमा, और जब उन पर अंधेरा आया, अलैहिम क़ामू, वो खड़े हो गए, उनमें आगे बढ़ने की सकत नहीं रहती क्योंकि उनके अंदर कोई रोशनी नहीं होती, उनके अंदर हिदायत का नूर नहीं होता। ठीक है जी? तो ये तीनों ग्रुप बना के अब अल्लाह ताला फरमाता है आयत नंबर 21, या अय्युहन नास, ए लोगो, ए तमाम इंसानियत, खिताब जो है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में उसूल में पढ़ाया था कि कुरान एक खिताब है, तो या अय्युहन नास, ए लोगो, उबुदू, अब्द, ग़ुलाम बन जाओ, हम पढ़ चुके हैं इसका मतलब। ठीक है जी? इयाका नअबुदू में मैंने आपको अब्दुल्लाह, अल्लाह का ग़ुलाम और अल्लाह की ग़ुलामी का मतलब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। उबुदू रब्बकुम, ग़ुलाम बन जाओ अपने परवरदिगार के, रब का नाम इस्तेमाल हुआ है, वो जिसने तुम्हें नेस्त से, कुछ भी नहीं था और उसने तुम्हें पैदा किया, और यहाँ से वो तुम्हें तुम्हारी मौत तक ले जा के उसके बाद वो तुम्हारा हिसाब करेगा। तो ये वो रब है जिसने परवरिश की है, जिसने नश्व नुमा की है, जो परवरदिगार है, उसके ग़ुलाम बन जाओ। ज़ाहिर है उसके अलावा हम किसके ग़ुलाम बन सकते हैं। उबुदू रब्बकुम, और फिर अल्लाह की आप ये रहमत देखें, अल्लज़ी, वो ज़ात, अब वो अपनी मिसालें दे रहा है समझाने के लिए कि देखो मेरे बंदे बन जाओ, मेरे ग़ुलाम बन जाओ। क्यों? खलक़कुम, मैंने तुम्हें तख्लीक किया है, खलक़ा, मैंने पैदा किया है तुम्हें। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और जो लोग तुमसे पहले थे उन्हें भी मैंने पैदा किया है। हाँ, तुम्हारे माँ बाप जो तुम्हें इतने प्यारे हैं, तुम्हारे नाना नानी, दादा दादी, तुम्हारे रिश्तेदार, सारी दुनिया, आदम से लेके आज तक जितने इंसान आए हैं और जितने जानवर गुजरे हैं और जितने बैक्टीरिया और जितने वायरसेस और जितने कीड़े मकोड़े और जो कुछ नबातात और हैवानात हैं, सबको मैंने पैदा किया है। और थोड़ा सा तुम इस तख्लीक को जहन में तो लाओ, लअल्लकुम, शायद के तुम, तत्तकून, तुम में तकवा पैदा हो जाए। तकवा का भी मैं आपको बयान भेज चुकी हूँ, अगर आपने नहीं सुना प्लीज़ आज सुन लें, कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट एक सिफत है कि कुरान में बार बार अल्लाह ताला ने मुत्तकियों को पैगाम दिया है। तो कुरान को समझने के लिए तकवा को समझना बहुत ज़रूरी है। कि या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुम, ग़ुलाम बन जाओ अपने रब के जिसने तुम्हें पैदा किया। खलकुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और जो लोग तुमसे पहले थे। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। फिर आगे अल्लाह का मज़ीद कमाल रहमत आप देखें कि क्या यही मिसाल काफ़ी नहीं थी कि उसने तुम्हें पैदा किया? नहीं, अल्लाह ताला मज़ीद कह रहा है, मज़ीद समझा रहा है। इतना इंसान को कुरान पढ़ते हुए अल्लाह पे प्यार आता है। अल्लाह कहता है अल्लज़ी, ये वो ज़ात है, मैं वो ज़ात हूँ, जअला लकुमुल अर्दा, जिसने मुकर्रर किया इस ज़मीन को फिराशन, एक फ़र्श। अब तख्लीक गुज़र चुकी है, ठीक है जी। मैं आपको बताऊँ अल्लाह की तख्लीक के तीन दर्जे हैं। पहला दर्जा जो है वो है बदअ, बे दाल आयन, जिसका मतलब है कि कुछ भी नहीं था और एक चीज़ पैदा हो गई, जैसे ज़मीन आसमान जो हमारे सैारे और सितारे हैं, कि ये तो एक धुआँ था और फिर ये उसमें से पैदा हो गया। तो कुछ नहीं पता कि ये कैसे पैदा हुआ, ये सब कुछ कहाँ से आ गया, लेकिन बस पैदा हो गया। ये अल्लाह की शान है। हम जो बिदअत कहते हैं ना, कि दीन में बिदअत ना करो, नई चीज़ ना बनाओ, जिसका कोई सबूत नहीं है वो ना बनाओ, तो बदअ का मतलब है, और अल्लाह का एक नाम भी है बदी, या बदी उस समावात वल अर्द हम कहते हैं। तो बदी का मतलब है वो पैदा करने वाला जो पैदा करने की तरकीब किसी को नहीं पता, ना ही उसके अज्ज़ा पता हैं, ना ही उसके इंग्रेडिएंट्स किसी को पता है, ना रेसिपी पता है, लेकिन वो चीज़ पैदा हो गई, वो बदअ है। दूसरा दर्जा जो तख्लीक का है वो है खलका, खलका यानी कि तख्लीक करना, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि उन्होंने बड़ा एक वो मुसव्विर जो है वो बड़ा खूबसूरत तख्लीक कार है, पेंटिंग करता है या कोई मुजस्मा बनाता है या कुछ भी। तख्लीक जो है ना, तख्लीक का मतलब है पैदा करना, यानी मालूम अज्जा से एक चीज़ को बना देना, एक मालूम तरकीब के अंडर, एक रेसिपी के नीचे एक चीज़ को बना देना, वो है खलका। और उसका तख्लीक का ही अगला दर्जा है जअला, जीम ऐन लाम, जिसका मतलब है मुकर्रर करना, यानी एक बनी हुई चीज़ को उठा के ठीक जगह पे रख देना। तो अल्लाह फरमाता है उसने तुम्हें तो पैदा किया और जो तुमसे पहले थे वो भी पैदा किए, फिर वही ज़ात है जो अल्लाह कुमुल अर्द फिराशन, उसने ये ज़मीन तुम्हारे लिए एक फ़र्श बनाया, एक बिछौना बनाया। और फिराश का मतलब है ना बहुत सख्त, ना बहुत नरम, ना बहुत खुरदरा और ना बहुत इतना नरम कि आप उस पर धंस जाएँ। उसकी सतह जो है, ज़मीन की सतह को फ़र्श का नाम कहा गया है, कि उस पर तुम चलते फिरते हो, उस पर तुम सड़कें बनाते हो, उसे तुम खोद के पानी निकाल लेते हो। ज़रा तुम इस ज़मीन के बारे में सोचो तो, क्या ये अल्लाह के सिवा कोई बना सकता था तुम्हारे लिए? वस्समा बिनाअन, और आसमान को तुम्हारे लिए एक छत बनाया। ये आसमान जो हमें सूरज की ताबकारी से महफूज रखती है, जो हमें दूसरे सितारों की रेडिएशन से महफूज करती है, ये आसमान जो जिसमें से हमारे लिए बारिश बरसती है, जिसमें बादल बनते हैं, जिसकी जिसके यानी कि कंट्रोल में, एक लिहाज से आप समझें कि ये आसमान जो है ये हमारा माहौल कितना कंट्रोल करता है और इसको कितना मुतवाजन रखता है। तो अल्लाह ने वो तुम्हारे लिए वो छत बनाई। वह अनजला मिनस समाई माअन, और अनजला उतारा उसने, मिनस समाई आसमान से, माअन माया पानी, फअखरजा पस निकाले बिही उसमें से, मिनस समरात मुख्तलिफ फल। अब पौधे का जो हिस्सा खाया जाता है, समरा सामीमरा, वो समर होता है, चाहे वो तरकारी है, साग है तो हम उसके पत्ते खाते हैं, अब वो शलजम है, मूली है तो हम उसकी जड़ खा रहे हैं, वो गोभी है तो हम उसका फूल खा रहे हैं। तो जो हिस्सा खाया जाता है वो उसका समर है, ठीक है ना जी। तो उसने उस पानी में से तुम्हारे लिए, अब ज़मीन में मिट्टी है, ब्राउन कलर की मिट्टी है, रेत है, कंकरियां हैं, एक ही जैसी है पूरी दुनिया में, और आसमान से पानी बरस रहा है, और इस मिट्टी और पानी के इम्तिजाज से उसने तुम्हारे लिए क्या कुछ पैदा कर दिया है ज़मीन में से। कोई चीज़ का असर ठंडा है, कोई चीज़ का असर गर्म है, कोई मीठी है, कोई खट्टी है, कोई कड़वी है, किसमें गुठली है, किसमें कोई गुठली नहीं है, किसमें छोटी छोटी गुठलियाँ हैं, किसमें बड़ी सारी गुठली है, कोई तरबूज है और कोई बेर है। तो ये अल्लाह की कुदरत है और अल्लाह को अपनी कुदरत हमें बताने की क्या ज़रूरत है। असल मकसद जो अल्लाह का है वो ये है कि मेरी कुदरत में गौर करो। अफला ताकिलून, तुम अकल नहीं रखते। अफला तदब्बरून, तुम गौर नहीं करते। अफला तफक्करून, तुम फिक्र नहीं करते, सोचते नहीं हो तुम। अल्लाह कुरान में बार बार ये कहता है, ठीक है ना जी। तो अल्लाह समझा रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए ज़मीन को एक फ़र्श जैसा बनाया, आसमान को छत बनाया, आसमान में से पानी नाजिल किया और ये पानी जो है तुम्हारे लिए रिज़्क उगाता है, रिज़्क लकुम, तुम्हारे लिए वो फल उगाता है जो तुम्हारे लिए रिज़्क है। और ये सारी बातें समझा के अल्लाह कहता है फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन, फ़ला पस नहीं, तजअलू तुम मुकरर करो, जाला तुम मुकरर करो, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, अंदादन, अंदाद निद की जमा है, नून दाल दाल, जिसका मतलब है बग़ैर लगाम के, बग़ैर नुकेल के एक ऊँटनी, जिसका मतलब बेसिकली है शरीक, यानी कंफ्यूज करना, एक चीज़ में किसी को शरीक कर देना, उस शरीक को जो है अंदाद कहते हैं। और अंदाद को इसीलिए ये कहते हैं क्योंकि इसकी मिसाल एक बग़ैर नकेल के एक जानवर की है जिसका जहां दिल चाहता है मुंह उठा के चल पड़ता है, उसको अपने खालिक का, उसको अपने मालिक का कुछ नहीं पता होता। फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन, बस अल्लाह के लिए शरीक ना बनाओ, व अंतुम तअलमून, और तुम तो जानते हो, तुम तो इलम रखते हो। अब अल्लाह ने क्या इलम दिया है हमें इस आयत में, इस आयत पे ही अगर मैं बात करूँ तो पता नहीं कितने घंटे लग जाएंगे। तुम्हें पैदा किया, तुमसे पहले आने वाली नस्लों को पैदा किया, ज़मीन को फ़र्श बनाया, आसमान को छत बनाया, आसमान में से पानी उतारा, उसमें से समर निकाले जो तुम्हारे लिए रिज़्क हैं, और फिर भी तुम मेरे शरीक बनाते हो, फिर भी तुम ये कहते हो कि माई बाप ऊपर अल्लाह है और नीचे आप हैं, और तुम कब्रों की इबादत करते हो, कब्रों से दुआएं मांगते हो, और तुम जाके पीरों और बाबों के हाथों पे हाथ रख के अपनी नमाजें और रोज़े बख्शवाते हो, और तुम कुरान नहीं पढ़ते हो, और तुम बैठ के कसीदे पढ़ते हो, तुम बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम दूसरों का हक मार के अपने बच्चे के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए झूठी सिफारिशें कराते हो, तुम रिश्वतें दे के अपने नाजायज़ काम कराते हो, और फिर तुम कहते हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं, तुमने अल्लाह की वहदानियत का और रसूल की सुन्नत का क्या पास रखा है, और तुम ये कहते हो कि हम तौहीद परस्त हैं। वो तो देखें जी, बड़ी एक सिंपल सी मिसाल मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ कि अल्लामा इकबाल ने कहा है किस कदर ग्रां तुम पे सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। तो हम तो सिर्फ अपनी नींद को नहीं कंट्रोल कर सकते, हम तो अपनी नींद के ज़रिए शिर्क करते हैं। हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जो है उसमें नींद भी शरीक है। हैं अल्लाह खैर है, सॉरी या अल्लाह, बस नहीं उठ सकते, हम बहुत थके हुए, अजान हो रही है, हम नहीं उठ सकते, ये है अल्लाह के साथ शिर्क। बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बुतों के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है, ये शिर्क हमारे दिलों में, हमारी नींद में, हमारे पेट में, हमारी शहवतों में छुपा हुआ है ये शिर्क, ये हमारे अंदाद हैं, ये सब बातें। फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून, और तुम तो जानते रहो। फिर अल्लाह दोबारा से एक चैलेंज देता है, व इन कुंतुम फ़ी रायबिन, और हाँ अगर तुम किसी शक में हो, मिम्मा नज़लना, उसमें से जो हमने नाजिल किया, अला अब्दिना, अपने एक बंदे पर। एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है कुरान का, वो इस बात की नफ़ी है कि रसूल जो थे वो अब्द, यानी वो इंसान नहीं थे, वो बशर नहीं थे। अब्द जो है ये इंसान के लिए, अब्दुल्लाह अल्लाह का ग़ुलाम, हम सब अब्दुल्लाह हैं, ठीक है ना। तो इस बात की नफ़ी कुरान में जगह जगह आई है कि कोई पैगंबर, कोई रसूल फ़रिश्ता नहीं है, वो नूर में से नहीं बना हुआ, वो मेरी औलाद नहीं है, वो मुझे बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है, कोई बंदों में, इंसानों में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे बड़ा प्यारा हो और मैं ये कहूँ कि ये बहुत स्पेशल है। हाँ मुस्तफ़ैन हैं, ऐसे चुने हुए बंदे हैं और उनका ज़िक्र कुरान में है, लेकिन जगह जगह अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ैन की और चुने हुए लोगों की आजजी का ज़िक्र किया है कि उनके पास कोई इल्म गैब नहीं है, उनके पास कोई ऐसा जादू नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से कोई मौजज़ा या करामत नहीं दिखा सकते और वो अल्लाह के हुक्म के बग़ैर कुछ नहीं कर सकते। और मुस्तफ़ैन जो हैं और चुने हुए लोग जो हैं, जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना इब्राहीम अलैहि सलाम, हज़रत मूसा अलैहि सलाम, हज़रत ईसा अलैहि सलाम, हज़रत नूह अलैहि सलाम, हज़रत शुएब अलैहि सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहि सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहि सलाम, ये सारे के सारे सबसे पहले तौहीद परस्त हैं, इन्होंने शिर्क नहीं किया। तो कभी भी यानी कि अगर अकीदा में शिर्क शामिल हो गया तो फिर समझें कि सब कुछ ज़ाया हो गया। ये बात अल्लाह यहाँ पे समझा रहा है। फ़इनकुन तुम फ़ी रई बिन मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरतिन फ़ातू, फिर देखें फ़ा आया है, मैंने कहा ना ये देर फोर होता है। अगर तुम किसी शक में हो, ये सारा कुछ पढ़ने के बाद, अभी तो तुमने सिर्फ 21 आयात पढ़ी हैं कुरान की, ज़रा देखो, अगर तुम फिर भी किसी शक में हो तो फ़ातू बिसूरतिन में मिसलही, तो ले आओ एक सूरत इस जैसी। कुरान में ये भी है कि इस जैसी 10 आयात ले आओ, इस जैसी चंद आयात ले आओ, और फिर ये है कि इस जैसी एक सूरत ले आओ। ये कुरैश मक्का को, बल्कि कुफार को और मुनाफ़िकों को एक खुला चैलेंज था। सूरत जो है ये मदनी है। वदउ और दावत दो, बुलाओ, दुआ करो, बुलाओ, शुहदा अकुम अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने मददगारों को, शुहदा जो तुम्हारी गवाही दें, मिंदूनिल्लाह अल्लाह के सिवा, इनकुन तुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। ठीक है जी, तो ये अल्लाह ने यहाँ पर दो दावे किए हैं। फ़ाबुदू रब्बकुम, बंदे बन जाओ, ग़ुलाम बन जाओ अपने रब के, अपने परवरदिगार के, और दूसरा है फ़ातू बिसूरतिम मिस्लिही, तो ले आओ एक सूरत इस जैसी। एक तो तुम मतलब के अल्लाह के बंदे बन जाओ, और अगर नहीं बनते हो तो एक चैलेंज है, ऐसा करो कि इस जैसी एक सूरत बना के ले आओ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग आयत है कुरान की, जिससे कुरान की फसाहत और बलागत का अंदाज़ा तो खैर मैं आपको समझा ही नहीं सकती, मैं अरबदान नहीं हूँ, लेकिन कुरान का एक मौजज़ा है ये। आयत नंबर 24, फ़इन लम तफ़अलू, पस फ़इन पस अगर, लम नहीं, ता तुम फ़अला ऐसा काम कर सको, फ़ाइल, ठीक है जी, फ़इन लम तफ़अलू पस अगर तुम ऐसा ना कर सको, वा और लन हरगिज़ नहीं करोगे, ये जो है ना ये फ्यूचर टेंस है, लन तफ़अलू हरगिज़ नहीं, हरगिज़ बिल हरगिज़ नहीं, तफ़अलू तुम ऐसा करोगे, तुम ऐसा कर सकोगे। तो अल्लाह ताला ने क़यामत तक एक दावा किया है कि इस कुरान जैसी एक सूरत तुम बना के तो ले आओ ना, फिर बात करेंगे। और जब से ये सूरत आई है, जब से कुरान का नुज़ूल हुआ है, उस वक्त से लेके आज तक और आज से लेके क़यामत तक ये कोशिश जारी रहेगी कि ऐसा कलाम बना लिया जाए, और आज तक कोई नहीं कामयाब हुआ। अब तो दहरियों ने और कुफार ने और हर किसी ने ये ओपनली खुले खुले मानना शुरू कर दिया कि कुरान जैसा कलाम बनाना नामुमकिन है, उन्होंने ख़ुद ये मान लिया है। अब मुसलमानों को इस पे दावा करने की, मुसलमानों को तो कुरान ज़्यादा समझ भी नहीं आता, लेकिन जो कुरान पे इसलिए रिसर्च करते हैं कि हम इसे झूठा साबित कर दें, वो भी कितने तो उनमें से मुसलमान हो गए हैं, और कितने ये कहते हैं कि ये नामुमकिन है। तो कुरान का ये दावा जो है, फ़इन लम तफ़अलू पस तुम ऐसा नहीं कर सकोगे, वलन तफ़अलू और तुम हरगिज़ नहीं कर सकोगे, फ़त्तकुन नार पस अत्तकू डरो, तकवा मैंने आपको कहा था ना डरने के मतलब में भी आता है, फत्तकुन नार पस डरो उस आग से, अल्लती वो जो, वकूदुहा ईंधन है उसका, अस्तौकदा मैंने आपको बताया था ना, वकदा वकूदुहा जिसका ईंधन है अन्नास लोग, उस आग से डरो जिसका ईंधन लोग हैं, वल हिजारा और पत्थर, यानी ये एक ऐसी आग है जिसमें इंसान तो भड़केंगे, इंसान उसका ईंधन है, लेकिन इसमें पत्थर भी भड़केंगे। दुनिया की आग में पत्थर को कुछ नहीं होता, ठीक है ना जी, ये जहन्नम की आखरत की आग का जिक्र है। उद्दत ये तैयार की गई है, लिल काफिरीन इनकारियों के लिए, काफिरों के लिए, ठीक है जी। वबशिरल्लज़ीना आमनू, और ये कुरान की एक बड़ी खूबसूरत आदत है जहाँ वो अच्छी तरह डरा देता है, जान निकाल देता है, फिर कहता है हाँ खुशखबरी भी है, अल्लज़ीना आमनू, उन लोगों के लिए जो ईमान लाए, वह आमिलु सवालिहात, और उन्होंने अमल किए नेक। सवालिहा, ये मैं आपको रूट आज भेज भी दूंगी, ये जो है सवालिहा जो है ना, सुलह, ये फसाद का उलट है। तो मुनाफ़िकों के लिए आया था ना कि वाइज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, जब इन्हें कहा जाता है ज़मीन में फसाद ना करो, यानी ये फसादी होते हैं। तो यहाँ पे ईमान वालों को और ये आप देखेंगे कुरान में कहीं भी ईमान अकेला नहीं आया है, अल्लज़ीना आमनू व आमिलु सवालिहात, क्योंकि ईमान जो है असल में वो नेक अमल है। और सवालिहा जो है इसमें तीन बातें आप याद रखें। नंबर एक, सुलह कराना, जिस अमल में सुलह का उनसर ना हो, जिसमें कोई एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो, वो अमिलु सवालिहात में नहीं आएगा, सुलह कराना। दूसरा उनसर जो है इसका वो है इस्लाह करना, दुरुस्तगी लाना। तो अमिलु सवालिहात जो है जब तक एक गलत चीज़ में दुरुस्तगी नहीं लाई जा रही होगी, वो अमिलु सवालिहात में नहीं होगा। और तीसरा उनसर जो है इसका वो है सलाहियत, यानी कि अपनी सलाहियत के मुताबिक बेहतरीन अमल करना। तो जहाँ पे आमिलु सवालिहात आप पढ़ें, आप ये तीन बातें याद रखें, सुलह कराना, इस्लाह करना, और अपनी सलाहियत के मुताबिक बेहतरीन अमल करना। वबशिरल्लज़ीना आमनू व आमिलु सवालिहात अन्न लहुम, ये कि उनके लिए जन्नातिन बाग हैं, तजरी मिन तहतिहल अनहार, तजरी बहती हैं, मिन तहतिहा उनके नीचे, अल अनहार नहरें। अब जन्नत की एक बड़ी खूबसूरत निशानी यहाँ पे बताई गई है, कुल्लमा, जब कभी, रुज़िक़ू, रुज़िक़ू रिस्क दिए गए वो, मिनहा उसमें से, उस बाग में से, मिन समरतिन कोई भी फल, कोई भी समर, अभी समर का जिक्र हुआ है ना, रिस्कन रिस्क के तौर पे, रिस्क का मतलब खाने वाली चीज़, तो जब भी वो रिस्क दिए गए उसमें से कोई फल जैसे खाने वाली चीज़, कालू वो कहेंगे हाज़ल्लज़ी, ये तो वो चीज़ है, रुज़िक़ना हम रिस्क दिए गए थे, रुज़िक़ना हमें रिस्क दिया गया था, मिन क़ब्लु इससे पहले भी। अब ये जन्नत में बैठे हुए हैं और इन्हें कोई फल दिया जा रहा है और जन्नत वाले कह रहे हैं ये ऐसी चीज़ हमें पहले भी दी गई है, वह उतू और वो दिए गए थे, बिही उसके साथ, मुतशाबिहा मिलता जुलता। बड़ी खूबसूरत निशानी है ये जन्नत की कि वहाँ पे कोई फल दिया जाएगा जन्नतियों को और वो उसको देख के सोचेंगे, कहेंगे कि ऐसा तो हमें पहले भी मिल चुका है। यानी कि इसमें दो निशानियाँ हैं, नंबर एक, जो जन्नती हैं उनको दुनिया में मिलने वाली नेमतों का पूरा एतराफ़ किया है, उन्होंने पूरा शुक्र अदा किया है। हाँ, शुक्र मैंने आपको क्या पढ़ाया था, शुक्र क्या चीज़ है, अल्लाह की दी हुई नेमत को उसकी मखलूक के फ़ायदे के लिए और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक, अल्लाह की रज़ा के मुताबिक इस्तेमाल करना दरअसल नेमत का शुक्र है। तो उन्होंने अल्लाह की नेमतों का दुनिया में शुक्र किया है और उनकी कदर की है, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने अल्लाह की नेमतों को देख के तफक्कर किया है, तदब्बर किया है, सोचा है, उन्होंने अंदर तक सोचा है, यानी कि जब वो यहाँ पे ख़त्म हो के जन्नत में भी पहुँच गए तो उनके दिल में वो याद बाकी है कि ऐसी चीज़ हमने दुनिया में भी देखी थी। यानी उन्होंने इतना गहरा तफक्कर किया है, गहरा तदब्बर किया है, और उन्होंने इस कदर दिल से शुक्र अदा किया है कि वो सारी बात उनको जन्नत में याद है, और वो उस फल को देख के ये सोचेंगे कि ऐसा तो हमें दुनिया में भी दिया गया था। अच्छा, जन्नत की निशानी ये क्यों है, क्योंकि जन्नत में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जन्नत में ये नहीं हो सकता कि हमें एक पेन दे दिया जाए या हमें एक किताब दे दी जाए और वो खाने की चीज़ हो, हम कन्फ्यूजन नहीं है जन्नत में, ठीक है ना जी। जन्नत बस खुशी खुशी है, सलामती ही सलामती है। तो वहाँ पे हमें जो खाने की चीज़ें दी जाएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम सबको मिलके, वो दुनिया की चीज़ों से मिलती जुलती होंगी, उन्हें देख के हम डरेंगे नहीं, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, उन्हें हम खुशी खुशी खाएंगे, ठीक है ना जी। वह उतू भी मुतशाबिहा, हालांकि वो दिए गए थे उससे मिलता जुलता, वलहुम फीहा अज़वाजुन, और उनके लिए उसमें जोड़े हैं, मुतवहरा पाकीज़ा, और ये फ़ीमेल का सीगा है कुरान में, किसी धोखे में ना रहें, जोड़ों का जिक्र जब हुआ है तो उसमें मुअन्नस का सीगा आया है, अज़वाजु मुतहरा पाकीज़ा बीबियाँ, पाकीज़ा जोड़े औरतों के, वहुम फ़ीहा ख़ालिदून, और वो हमेशा उसमें रहेंगे। ये आयत नंबर 25 तक हमने आज पढ़ा है। गौर से आपने सारे माइंड मैप्स देखने हैं। बिल्कुल कोई सवाल होगा तो वो पूछना है, कोई और मसला है, कोई मैंने गलती की है तो मुझे बतानी है। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपनी एक बहुत प्यारी दोस्त की जिन्होंने मुझे लिखा कि डॉक्टर अफशां आप पहले से रिकॉर्ड कर लिया करें, प्लीज़ हमें रेगुलर लेसन भेजा करें। यानी मुझे बड़ी एक आप समझें एक लिहाज से शर्म आई कि यार मैं बाकायदा लेसन भेजने का वादा किया है तो भेजो फिर। मैं आपसे बहुत, मेरी रिक्वेस्ट है कि इस्तकामत की और साबित कदमी की दुआ आपने अपने लिए जब भी अपने लिए भी करनी है ना तो मेरे लिए साथ करनी है, क्योंकि बस मैं आपको बताऊँ ना कि शैतान पीछे पड़ जाता है और उससे फिर जान छुड़ानी, हम बड़े कमज़ोर लोग हैं, ठीक है ना जी। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल मिलने के वादे के साथ, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात।